ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذر لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. آج بے جا خرچ کرنے کو پر بھی یہ بھی ایک سٹیٹس کی بات سمجھی جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے اس کے اوپر کتنا لگایا. لوگ بلکہ اس کی ویڈیوز بنا کے شیئر کرتے ہیں اور شو آف کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی باقاعدہ بتاتے ہیں دوسروں کو، اس کے بھی اشتہار دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا کرا، میرے تو اتنا لگا اس چیز کے اوپر. حالانکہ یہ تبذیر میں آتا ہے، اور یہ اخوان شیاطین ہے، ابلیس کے بھائی ہیں. کہ کس طرح ابلیس کے بھائی ہو گئے؟ کیسے؟ کہ جیسے ابلیس نیگیٹو کاموں میں اپنی اپنا آپ لگاتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی نیگیٹو چیزوں پہ خرچ کیا، غلط چیزوں پہ خرچ کیا. اسی طرح اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ یہ اپنے عمل میں ابلیس سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے اس کے بھائی ہیں. جو کام ابلیس کرتا ہے یہ کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کو بھی نفس نے کہہ دیا نا کہ یہ بڑی اچھی ہے، اللہ رسول کا حکم جو کچھ بھی ہو بس وہی کام کرنے لگے. نفس نے کہا کہ بھئی مجھے یہ چاہیے، یا یہ انٹرٹینمنٹ، یا یہ ایسی چیز، یا یہ غلط کام ہے، اس کے اوپر خرچ کرنے کا میرا دل کرتا ہے، بس اس میں فن ہے، یہ انجوائمنٹ ہے. تو جس کو نفس نے ڈیکوریٹ کر کے خوبصورت کر کے دکھا دیا وہی کرنے لگے، تو یہی کام تو شیطان کرتا ہے. کہ اس نے بھی اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، جس چیز کو اس کے نفس نے مزین کر کے دکھا دیا اس نے وہی کیا. تو اخوان شیاطین ہے یہ. اسی طرح دوسرا اس کے بارے میں امام قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ اخوان شیاطین، اس طرح کے شیطان نے بھی جسٹیفیکیشنز دی نا اپنے کام کی، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. تو اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے، ان کے پاس جسٹیفیکیشنز ہیں اپنے کام کی. اسی طرح ایک اور چیز بھی امام قرطبی لکھتے ہیں، اخوان شیاطین یہ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن یہ ان کا جو انجام ہوگا شیطان کے ساتھ ہوگا، حشر وہاں پہ اس کے ساتھ ہوگا، اس لیے یہ ان کو کہا گیا اخوان شیاطین. ٹھیک ہے، تو مبذرین جو ہے نا وہ اخوان شیاطین ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. انسان سوچتا ہے میں نے کمائی کی، میں جدھر مرضی لٹاؤں، میں نے محنت سے کمایا نا، میرے پیسے ہیں، میں جہاں مرضی خرچ کروں، مجھے کون ہوتا ہے روکنے والا کوئی. پہلی سوچ ہی غلط ہے، اسی لیے آگے بھی غلط آ رہا ہے. پہلی سوچ کیسے غلط ہے؟ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرے پیسے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ کا مال ہے. جب یہ آپ غلطی کرتے ہیں نا، یہ نہیں پتا کہ مال ہے کس کا، تو پھر آپ خرچ کرنے میں بھی غلطیاں ہوں گی. اور یاد رکھیں، حشر کے میدان میں 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کسی کے پیر ہلیں گے نہیں وہاں سے. 5 سوالوں میں ایک سوال یہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو خرچ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، خرچ اللہ کی مرضی سے ہوگا. جو اپنے مال کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے، جو میرے اس نے حوالے کیا ہوا ہے، یہ ہے اللہ کا، مجھے تو اس نے امانت دار بنایا ہے اس کا صرف، تو وہ تو نہیں پھر تبذیر کر سکتا. اور آج دیکھیں بازاروں میں کتنی تبذیر ہو رہی ہے، جو چیزیں نہ ضرورت کی نہ کوئی ہمارے کام آنے والی، بس ان کے اوپر پیسے برباد کر رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہماری ویاضی اور سخاوت ہے، اور دیکھو میں کتنا کھلا خرچ کرنے والی. یہ کھلا خرچ کرنا نہیں ہوتا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. یعنی اگر تم شیطان کے بھائی بن رہے تو یہ یاد رکھنا، شیطان تو ناشکر ہے. کفور شکور کا الٹ ہے ناشکری. شکر گزاری کیا ہے؟ قدر دانی، قدر کرنا. اصل میں لفظی معنی شکر کا کیا ہوتا ہے؟ بھر جانا، بھر جانا، دل بھر جائے کسی کی قدر دانی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما شاکر ہوا اما کفورا، چاہے تم شکر گزار بنو یا ناشکر بنو. شیطان ناشکرا تھا، اللہ تعالیٰ کے احسانات इतने ज्यादा हैं, इंसान को चाहिए कि अपने आप को महसूस करे कि मैं अल्लाह के एहसानात तले दबा हुआ। ये महसूस करे, दिल में ये ख्याल हो, जुबान भी इसके तर्जुमान हो, जुबान से भी यही निकले इन अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, और अमल से भी वो ये करके दिखाए कि मैं अल्लाह तेरे एहसानात की कदरदानी करने वाला हूँ। ये शुक्रगुजारी, और नाशुक्री इसके ऑपोजिट है, जैसे शैतान नाशुक्र था, कदर ही नहीं ना दिल के अंदर ये ख्याल कि मेरे रब ने मेरे ऊपर एहसान किया हुआ। तो जुबानी या दिल के अंदर या अमल के अंदर नाशुक्री, ये इंसान को शैतान के रवैये के करीब करती है। शैतान इंसानों के अंदर भी नाशुक्री का रवैया डालता है। जब इंसान कहता है मुझे क्या मिला, मेरे पास क्या है, तो नाशुक्री का रवैया शैतान का रवैया, तो तुम शैतान के भाई ना बनो, शैतान जैसे अमल ना करो, नाशुक्री का रवैया ना करो, माल को उड़ा के इसको मिस यूज करके, इसको बेजा सर्व करके, जहां पे जरूरत नहीं इसको जाया करके शैतान के भाई ना बनो। शैतान ना शुक्र है, तुम भी ना शुक्री कर रहे हो जब तुम ये करते हो। ये ना शुक्री है ना माल की, उसको जाया करना। अब कहीं हम खाना फेंक रहे हैं, कहीं हम माल को ऐसे उड़ा रहे हैं, बस कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमें दे दिया तो अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता किधर भी हम उड़ाएं। ये ना शुक्री है, क्योंकि कोई पता नहीं, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, आज है कल हो सकता नहीं हो। कोई भी लिखवा के नहीं लाया हुआ अल्लाह ताला से कि बस मुझे मिलता ही रहेगा सारी जिंदगी। तो डरना चाहिए इसमें, नाशुक्री से बचना चाहिए, और मत बने शैतान के भाई। माल में अपना ना समझे कि ये मेरा हक है, नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। वह इम्मा तो अनहुम, और अगर तुम एराज बरतो इनसे चाहने को, क्या रहमत में रब्बी का, अपने रब की तरफ से रहमत, यानी अगर तुम इनसे इसलिए एराज बदलते हो, क्या मतलब कहा जा रहा है। देखिए इस आयत को आप वैसे नहीं समझ पाएंगे जब तक ये आपको ये समझाया ना जाए, अगर आप तर्जुमा सिर्फ पढ़े आपको नहीं समझ आएगी। कुछ लोग कहते हैं हमें तो कुरान का तर्जुमा हम पढ़ लेते, हमें खुद ही इतनी समझ है, अब बताएं कि क्या समझ आ रही है इससे, नहीं समझ आ रही ना। तो ये भी एक बहुत प्यारा असूल बताया गया कि अगर कोई आपके पास आ जाए, मसलन जर कुर्बा में से या मिस्कीन में से, कोई मुसाफिर में से, कोई ऐसा जरूरतमंद आपके पास आ जाए और आपके पास नहीं है, और आप चाहने को रहमत अपने रब की तरफ से, यानी अच्छे दिनों का आपको इंतजार है कि कोई, हो सकता है मुझे कहीं से माल अब आ जाए, मेरे पास इस वक्त तो नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे मेरी पे आने वाली है या मेरा बोनस आने वाला है, तो उसके अंदर से तो अपने रब की रहमत का आप उम्मीद रखते हैं, तो लेकिन अभी आपके पास नहीं है, तो अब आपने एराज बरत रहे हैं आप उससे, यानी आप उसको नहीं इस वक्त दे सकते, तो फिर क्या है तरजुहा, तुम उम्मीद रखते हो उसकी, फकुल लहुम कौल मैसूरा, तो तुम उनसे कहो नरम बात, यानी आपके पास इस वक्त नहीं है, आप इस वक्त नहीं दे सकते, लेकिन आपको उम्मीद है, इस वजह से नहीं आप मना कर रहे कि मेरे पास है तो सही लेकिन मैंने देना नहीं, बस मैंने नहीं देना, मैं अपने पर्स खरीदने में, अपने जूते खरीदने में, अपने और डेकोरेशंस और ये खरीदने में, तो मैं इतना पैसा भी लगा लूं, 200-400 डॉलर भी निकाल दूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे तो मेरा स्टेटस पता चलता है, लेकिन कोई गरीब मिस्कीन आ जाए उसके ऊपर 150 भी खर्च करना मुझे मुश्किल लगता है, मैं कहूँ मैंने नहीं देना। ये वाला एराज नहीं, एराज उस वक्त जिस वक्त आप अपने रब की तरफ से रहमत की उम्मीद रखते हैं, यानी आप, आपको पता है कि मुझे कहीं से आ जाना है, इस वक्त मेरे पास नहीं है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले वाले आए थे, वो फसादी किस्म का कबीला था, पता था कि ये लोग जो इनको कुछ दे दिया ना तो ये आगे फसाद ही करेंगे, तो आपसे सर उनसे एराज फरमाया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि अगर आपने एराज बरतना है ना, तो तब भी उसका भी तरीका क्या होगा, अदब सिखाया, एटिकेट उसका ये है कि तब भी उनको झिड़कना नहीं है, तब भी उनके साथ सख्त बात नहीं करनी, तब भी उनको मना करते हुए कि ऐसी नागवारी से कोई ताने नहीं देने, बल्कि मसाइला फला तनहर, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, साइल को झिड़को नहीं, झिड़कना नहीं है, बल्कि नरम बात, उम्दा बात, आसानी वाली बात। नहीं फिर आप कह दें कि आप हमें माफ कर दें, अभी हमारे पास नहीं है, इंशाल्लाह जब होगा तो फिर हम आपको जरूर देंगे, कुछ ना कुछ वरना दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत माल नहीं होता था, लेकिन कोई आपसे कुछ मांग लेता था ना, तो उसको कभी इनकार नहीं करते थे। एक दफा किसी ने मांग लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसी औरत ने भेजा अपने बच्चे को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कपड़ा मांग के लाओ, कुर्ता था शायद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कुर्ता नहीं था, एक ही था जो आपने पहना हुआ था, तो फरमा दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो उसने वो चला गया बच्चा, और वापस आया और उसने कहा कि मेरी माँ करे जो आपने पहना हुआ वो ही दे दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उतार के दे दिया। इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाले थे कि कभी इनकार नहीं करते थे किसी को भी, सुभान अल्लाह। तो इसमें आसानी, इसमें कौलम मैसूरा में ये भी है कि अगर आजकल जरा तंगी है तो आसानी होगी तो मैं दे दूंगी, और दूसरा इसके अंदर क्या है, मतलब कि नरम बात करें और ऐसी बात ना करें जिसमें कोई भी ताना हो, कोई तंज हो। आप लोगों का तो काम ही ये बन गया, आप लोगों को मांगने की आदत है, आप लोग तो ऐसे हो गए हो, और ये नहीं कहना, ठीक है। ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطه كل البسط। अच्छा, दो चीजें बताई गई यहाँ पे, दो चीजों से यानी एक मना किया गया, एक ये कि ऐसा भी ना आपकी जिंदगी में खर्च के मामले में ना आपको अदब सिखाया गया, ना तो ऐसे करें कि अपना हाथ बंधा हुआ रखें अपनी गर्दन के साथ, हाथ बंधा हुआ गर्दन के साथ मतलब क्या, बुखल यानी कंजूसी, यानी आप खर्च ही नहीं कर रहे, ना ऐसा हो वाला तब सुधा कुल अलबस्त, और ना ही ऐसा फैला दे कि हर तरफ फैला देना, फतकौदा मलूम महसूरा, के उसके बाद आप खुद मलामत ज्यादा हसद ज्यादा बैठ जाए। अच्छा, पहले दोनों चीजों को देख लेते हैं, एक है बुखल की मजम्मत और एक है फजूल खर्ची की मजम्मत, यानी इतदाल का रास्ता। ना तो ऐसा खर्च हो कि भाई आप अपनी जरूरत पे भी नहीं खर्च करते, किसी पे भी नहीं खर्च करते, और आपको बस अपना हाथ बांध के रखा हुआ है अपनी गर्दन के साथ, यानी इसका मतलब है कि आपके लिए खर्च करना इतना मुश्किल है, वो भी नहीं होना चाहिए। ना ऐसा आप फैला दें हाथ को कि फजूल खर्ची पे उतर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निजात देने वाली तीन चीजें हैं, मुंजियात यानी दुनिया और आखरत में निजात देने वाली। एक नंबर वन, कि चाहे नाराजगी हो या खुशी हो, हकदार को उस हक देना। नंबर टू, मुफलिसी हो या तवंगरी हो, यानी आप चाहे अमीर हैं या गरीब हैं, मियाना रवि इख्तियार करना। नंबर थ्री, तन्हाई हो या फिर लोगों में हो, हर वक्त अल्लाह का डर दिल में होना, हर वक्त अल्लाह से डरते रहना। तो ये चीजें हैं कि जो इंसान को निजात देने वाली, यानी मुफलिस भी है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही बुखल कर लिया, और या फिर बिल्कुल अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, खुद घर में है नहीं लेकिन ऐसे उड़ा रहे हैं। और फिर अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, तब भी बुखल से भी परहेज करना और तब भी फजूल खर्ची से भी परहेज करना, इन दोनों हालतों में मियाना रवि। बाज लोग एक एक्सट्रीम पे होते हैं, बाज दूसरी पे होते हैं, बाज तो ये हद पे आ जाते हैं कि इस कदर कंजूसी, इस कदर बुखल के अपनी जरूरियात पे भी खर्च करने को वो बहुत समझते हैं कि ये भी नहीं जरूरत, और अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने घर में खर्चा नहीं देते, इतना बुखल है, एक एक गिन गिन के पैसे को रखते, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बुखल है ना, ये भी एक ऐसी सिफत है जो शैतान को बहुत पसंद है। शैतान जो है वो उसको पसंद करता है जो बखील होता है, बखील जो है चाहे वो नेक हो, लेकिन शैतान को वो ज्यादा पसंद है, बजाय इसके के जो सखी होता है और वो फासिक होता है, उससे ज्यादा वो किसको पसंद करता है? बकील को। और उस कहता है कि जो सखी है उसको नापसंद इसलिए करता है, कहता है ये किसी वक्त भी अल्लाह ताला की तरफ पलट सकता है खर्च करके अल्लाह के रास्ते में। लेकिन बखील जो है वो बुखल जो ऐसी चीज है जो इंसान को अल्लाह की नाराजगी की तरफ लेकर जाती है, हकदारों के ऊपर खर्च नहीं इंसान करता और गुनाहगार होता है इंसान। ये इसराफ भी ना करे और बुखल भी ना करे। तो यहाँ पे तरीका कार स्पेंडिंग का बताया गया, और जिसने मियाना रवि इख्तियार करी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फकीर नहीं होगा, फकीर नहीं होगा। वो देखे ना जो तरीके के साथ चलता है, ना एक एक्सट्रीम पे ना दूसरी पे, ना तो ये सोचे कि आज तो मेरे पास बहुत है तो जितना भी खर्च करूं क्या फर्क पड़ता है, और उसको उड़ाते फिरें, ना ही ये करें कि बुखल के साथ इतना ऐसे हो जाएंगे किसी को तोहफा भी देना तो गिन गिन के दे रहे। हदीस में आता है कि जब सुबह होती है ना तो दो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, एक कहता है अल्लाह खर्च करने वाले को और अता कर, और ए अल्लाह जिसने रोक लिया उसका पहला भी जाया कर दे। ये फरिश्ते दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं ऐसे इंसान को। तो इसे अंदाजा आप करें कि फरिश्तों की भी दुआएं और बद्दुआएं उनके लिए हैं जो एक जो खर्च करने वाला है, खर्च करने वाला अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ताला उसको और अता फरमाता है अपनी जनाब से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अल्लाह के रास्ते में तो जितना भी खर्च कर ले तो उसकी मुजम्मत नहीं है, वो तो अच्छा ही है। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने में, मगर ये ना करे इंसान के सारा का सारा ही दे दे के उसके बाद खुद फकीर बन के बैठ जाए रोता भी। हाँ, हमें सहाबा कराम की ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन ये उसके लिए है जो बाद में पछताने ना बैठ जाए। बाज दफा हम कुछ दे के फिर उसके बाद पछताते हैं, आए मैंने क्यों दे दिया, मुझे क्या जरूरत थी उस वक्त देने की, उस वक्त मैं बड़ी सखी बन गई थी, पता नहीं मैंने तो लेक्चर सुन लिया था और फिर मैंने दे दिया, अब तो मुझे अफसोस होता है मैंने क्यों दिया। इससे बेहतर है कि फिर आप देते ही ना, क्योंकि वो भी अमल जाया हो जाता है। ठीक है, तो याहिया बिन जकरिया से शैतान मिला तो उन्होंने पूछा है इबलीस मुझे खबर दे कि लोगों में तुझसे सबसे ज्यादा पसंद कौन है और सबसे ज्यादा नापसंद कौन है। तो उसने कहा सबसे ज्यादा मुझे वो अच्छा लगता है जो मोमिन हो मगर बखील हो, और सबसे ज्यादा मुझे बुरा वो लगता है जो फासिक है लेकिन सखी है। फासिक वो है बड़ा गुनाहगार है लेकिन सखी है, यानी सखावत उसको बहुत नापसंद है। तो हजरत याहिया ने कहा कि भला ये कैसे मुमकिन है? तो उसने कहा कि बखील का बुखल काफी है, उसको काफी हो जाएगा, वो उसका बुखल मेरे लिए काफी है, इसलिए कि मैं उसको फिर अल्लाह के रास्ते से इसी से दूर कर देता हूँ। और फासिक की जो सखावत है ना, मैं इसलिए उसे डरता हूँ कि उसकी सखावत की वजह से मुझे डर लगता है कि इसका दिल अल्लाह की तरफ कभी भी मायल हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा शैतान भी बुखल के ऊपर इंसान को उभारता है, कहता है खर्च ना करो। और इंसान बचा बचा के रखता है, बचा बचा के रखता है और फिर छोड़ के चला जाता है, उसको कब्र में चला जाता है जहां पे माल उसके साथ नहीं जाएगा, वो बचा हुआ माल वहीं दुनिया में रह जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में वहां पे लगाए जहां पे उसकी आखरत के लिए तोशा बन जाए या उसकी जरूरियात पूरी हो जाए, वरना ये माल तो दूसरों का है, अपना तो कुछ भी नहीं है। इस तरह ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो इतनी फजूल खर्ची करते हैं, इतना इसराफ करते हैं, इतना हाथ खोले रखते हैं कि फिर बाद में ये हो जाता है कि अफसोस करते रहते हैं कि कोई वो दिन भी होते थे हमारे पास हुआ करता था, हमने कदर नहीं की। तो भाई आपने उस वक्त क्यों लुटाया इस तरह? तो देखिए अल्लाह ताला ये भी सिखाता है ना कि किस तरह आपने अपने माल के साथ बिहेवियर रखना है। ऐसे जब इंसान लुटाता तभी है जिस वक्त कि उसको इसकी कदर नहीं होती। तो ऐसे ना लुटाओ कि जाया कर रहे हैं, इधर इसराफ इधर उसराफ। जहां पे 100 खर्च करने हैं वहां पे 500 खर्च कर रहे हैं, क्यों? 100 में भी तो काम हो रहा था, लेकिन हम 500 खर्च करने हैं क्योंकि साथ दिखावा भी है। तो क्या होगा अगर तुम ये बात नहीं समझोगे? तो क्या होगा? फतह खुदा मलूम महसूरा, अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद मलामत सता और हसरत सता होगे। ये जो मलामत सता और हसरत सता है ना, ये मलूम का ताल्लुक पहली बात से है, वला तजल यदा का मगलूला, और महसूर का ताल्लुक दूसरी बात से, वला तबसुत हा कुल्लल बस्त। समझ आई? अगर तुम बुखल करोगे तो मलामत सता होगे। मलामत सता कैसे? याद रखिए कि जो बखील होता है ना, उसको कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता उसको, और वो लोगों में भी, लोग भी उसको पर मलामत ही करते हैं। और बुखल जाहिर हो जाता है इंसान का, ऐसे छुपा नहीं रहता। तो अल्लाह के यहां भी उसके पर मलामत है और लोग भी कभी उसको पसंद नहीं करेंगे। हातिम ताई का नाम आज तक आप देखते हैं ना, सखावत का एक बहुत बड़ा नाम है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी पहले वो फौत हो चुका था, लेकिन सखावत उसकी इतनी थी कि आज तक देखे, इतने साल गुजर गए, कई और लोग आए होंगे गए होंगे, लेकिन उसका नाम आज तक जिंदा है। इसलिए कि वो लोगों में सखावत करता था, लोगों के काम आता था, लोगों पे स्पेंड करता था। तो बकील तो सारी नेकी से ही महरूम हो जाता है, जिसने देख देख के, गिन गिन के लोगों को खाना खिलाना, गिन गिन के देख देख के लोगों को कुछ देना, गिन गिन के देख देख के सदका करना, जकात भी देनी तो गिन गिन के देनी, ये क्या नेकी पाएगा? और एक दिन यही होगा ना कि वो कब्र में चला जाएगा और उसका माल यहीं पड़ा रह जाएगा, फिर लोग उड़ाएंगे और कभी कभी तो बच्चे ही जाया कर देते। तो इसको कब्र में नहीं लेके जाना, अपनी आखरत के लिए इसको बनाना है। तो अगर तुम बखील हो गए तो मलामत ज्यादा होगी, और अगर तुम फजूल खर्चोगे महसूरा होगे, हसरत ज्यादा, बाद में हसरतें करोगे कि आए क्या कर बैठा, क्यों मैंने इतना ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट खर्च किया, रिग्रेट होगा तुम्हें। अल्लाह ताला ने हमें हर एक चीज की जहां पर ताकीद की है, बताया, रहनुमाई फरमाई है। हिदायत का रास्ता है ये कुरान। हाँ देखें, रिस्क के मामले में, माल खर्च करने के मामले में भी हमारी रहनुमाई की है। और याद रखें कि कभी भी मोहताजों, फकीरों, मिसकीनों, इनके ऊपर खर्च करने से आपका माल कम नहीं होगा, बल्कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से, जयीफों की वजह से। माशरे के बेकस लोग हैं या कमजोर हैं, कमजोरों में बच्चे भी आते हैं, यतीम भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, इनके ऊपर खर्च करने की वजह से अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें रिस्क देता है। इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसका चाहे रिस्क कुशादा कर दे, जिसका चाहे तंग कर दे। ये भी इंसान ना सोचता है कि रिस्क जिसको ज्यादा मिला है, पता नहीं अल्लाह को कितना पसंद है इसलिए इसको ज्यादा दिया हुआ है, और जिसके पास कम है पता नहीं इसकी कोई सजा ही होगी जो इसको कम दिया। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं। उसने जो रिस्क दिया या किसी को ज्यादा या कम, तो वो उसकी इम्तिहान करने के तरीके, आजमाने के तरीके। जिसको कम दिया उससे भी उसकी आजमाइश है, उसका टेस्ट है उसके सबर का। जिसको ज्यादा दिया उसमें भी उसकी शुक्र का टेस्ट है कि शुक्र करता है या नहीं। और इसके अंदर कभी भी ये चीज को ना सोचे कि पता नहीं आए ये तो बड़े अच्छे ही होंगे जो, या कोई इंसान खुद अपने आप में सोचे कि मैं तो बहुत अच्छा ही हूँ इसलिए मुझे इतना मिल रहा है, और पता नहीं इसी तरह मुझे आखिरत में भी मिलेगा। यहाँ देखो हमें क्या, हमारे तो, हम तो जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं और ऐसे हैं, और हमें तो इतना कुछ मिला हुआ, तो इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छे ही लोग हैं। ये कहाँ से हमें मिला, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए टेस्ट है, ये सब टेस्ट के तरीके हैं अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कौन पाकर क्या करता है और कौन खो के क्या करता है। कभी अल्लाह ताला दे के और फिर ले लेता है, कभी कभी दिया होता है किसी को और फिर अल्लाह ताला उसको फकीर कर देता है। ये भी अल्लाह ताला का तरीका है आजमाने का। तो हमें नहीं पता हम किस किस तरह हमारे ऊपर आजमाइश आती है, हमारे ऊपर टेस्ट आते हैं ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में है। तो कभी कोई माल की फरावानी को इस तरह अपने लिए ना समझे कि मैं बहुत अच्छा ही हूं जो मुझे इतना कुछ मिल रहा है, और कभी कोई इस बात से दुखी ना हो कि पता नहीं अल्लाह ने हमें नहीं दिया तो हमारे कोई इसमें कसूर है या हमारे कोई इसमें कोई ऐसी बात है हमारी तरफ से। नहीं, हम अल्लाह को नापसंद है नहीं। अल्लाह के पैगंबर जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चॉइस दी थी कि आपने नबी बादशाह बनना है या नबी अब्द। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अब्द बनने को चूज किया, जिब्राईल अलैहि सलाम की तरफ देखा, क्योंकि एक फरिश्ता आया था ना ये पैगाम लेके कि अल्लाह ताला आपको फरमाता है कि आपको इख्तियार है आप नबी बादशाह बने या नबी अब्द बने। जिब्राईल अलैहि सलाम की तरफ देखा तो उन्होंने इशारा किया कि नबी अब्द बनना जो है ना वो सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए क्या चूज किया था कि एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ये चूज किया अपने लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खुद चूज किया था, ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तंगी वो तंग करने के लिए ऐसा किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए ये चूज किया था। तो अल्लाह ताला के पैगंबर आप देखें अक्सर फखर व फाके में रहे, ये नहीं कि अल्लाह ताला को नापसंद थे, वो तो अल्लाह ताला के सबसे प्यारे बंदे थे। तो फिर उनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन ये भी मतलब नहीं कि जो भी बुरा होगा उसके पास ज्यादा होगा। हज़रत दाऊद अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम को भी बहुत मिला था। तो आप इसको स्टैंडर्ड ना बनाएं कभी भी, ये कौन अच्छा है या कौन बुरा है, ये अल्लाह के फैसले हैं और उसमें हिकमतें हैं, ये उसकी प्लानिंग है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरुन बसीरा। तुम क्या सोचते हो अल्लाह को पता नहीं है कुछ? और ऐसे ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, तकसीम होता जा रहा है माल, कहीं ज्यादा मिल रहा है कि कम। नहीं, वो खबर रखने वाला, उसको पता है, सबका पता है, वो सबको देख रहा है, उसको पता है कि किसको कितना देना है किसको नहीं देना। एक जगह हदीसे कुदसी आती है कि मेरे बंदों में से कोई ऐसा है कि अल्लाह उसे गनी कर दे तो उसके दीन में नुक्स आ जाए, और मेरे बंदों में कोई ऐसा है कि अल्लाह उसको फकीर कर दे तो उसके दीन में नुक्स आ जाए। तो अल्लाह को पता है कि अगर इसको मैंने गनी कर दिया ना ये दीन से भाग जाएगा, अल्लाह को पता है अगर इसको मैंने फकीर कर दिया तो ये दीन से भाग जाएगा। अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें। वला तख्तलू औलादकुम खशयत इमलाक, और ना तुम कत्ल करो औलाद को मुफलिसी के खौफ से। यहाँ पे चूंकि रिस्क की बात आ रही है तो ये भी बता दिया गया कि बाज दफा बल्कि अक्सर दफा रिस्क की कमी के खौफ से औलाद को कत्ल कर दिया जाता है। क्या है, हमारे साथ खाने में शामिल हो जाएगी, आज कहते हैं पढ़ाएंगे कैसे, फीसें इतनी ज्यादा हैं, खिलाएंगे कहाँ से, पहनाएंगे कहाँ से, महंगाई इतनी हो गई है, लिहाजा कम बच्चे ही अच्छे। नहीं, तुम अपना माइंड सेट सही करो। फरमाया यहाँ पे सही कर दिया माइंड सेट, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। देखिए पीछे से सेटिंग खराब होती है ना तभी काम आगे खराब होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पीछे सेटिंग खराब है कि जब हम सोचते हैं ये मेरा माल है, मैं जितना मर्जी खर्च करूं, मैं जितना मर्जी उड़ाऊं, मैं चाहे इसको आग लगाऊं मुझे कौन पूछेगा। तो अमल जो बाद में हुआ रॉन्ग हुआ वो इसलिए रॉन्ग हुआ कि उसके पीछे जो माइंड सेटिंग थी ना वो सही नहीं थी। माल को अपना समझा ना, इसलिए यहां पे भी क्या है, यहां पे ये समझा कि मैं खिलाता हूं औलाद को। आदमी समझता है मैं पिलाता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं कमाता हूं, तो ये खाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते नहीं, तुम नहीं खिलाते। नहनु नरजुकुहुम वइय्याकुम, हम रिस्क देते हैं इनको भी और तुमको भी। सूरह नाम में भी एंड में यही बात आई है कि औलाद को कत्ल ना करो। और इस वजह से खास तौर पे कत्ल करना, वैसे ही कत्ल करना जायज नहीं है कि वो जब बेटियां होती थी तो उनको जिंदा दरगोर कर देते थे कि बेटी है हमारा कोई दामाद बन जाएगा, हमारी गैरत की बात है, बड़ी होगी तो कोई ऐसे हमारे इज्जत के ऊपर हर्फ ना आ जाए। वो इसके ऊपर बेटियों को कत्ल कर देते थे, वो भी गुनाह है। लेकिन एक बहुत बड़ा गुनाह ये भी है कि मुफलिसी के खौफ से, तुम क्या सोचते हो, तुम खिलाते पिलाते हो, तुम अर-रज़ाक हो, अल्लाह अर-रज़ाक है। जब हम अस्माए हुस्ना पढ़ते हैं तो या रज़ाक को, या रज़ाक को तस्बियां तो कर देते हैं, ये कि कभी ये सोचा भी है कि रज़ाक कौन है, रिस्क देने वाला? हम तो अपने आप को रिस्क देने वाला समझते हैं। मैं लाता हूं, मैं कमाता हूं तो कुतुम खाते हो। नहीं, मैं कमाता तो हूं, मैं लाता तो हूं, लेकिन अल्लाह खिलाता तो। जहां पर ये खराबी आ जाती है वहां पे फिर औलादों का कत्ल शुरू हो जाता है। फिर यही होता है ना कि जाहिर है हम कैसे सस्टेन करेंगे, जाहिर है इंसान की तो लिमिटेशन है। इंसान जब अपने ऊपर सोचता है तो फिर उसको ये होता है कि नहीं। इसी तरह मुल्कों में आता है, जो मुल्क भी ये सोचने लगते हैं आबादी बढ़ गई तो हमारे रिसोर्सेस तो कम है, लिहाजा फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे बंद कराओ, इनके बच्चे ज्यादा हो गए तो खाएंगे कहाँ से। तो फिर वो ऐसे ऐसी नारे, वो बूढ़े आबादी के इश्तेहार भी टीवी पे चलाते हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह की चीजें, और दो ही बच्चे दिखाते हैं। और फिर इतना इसको अल्लाह ताला हमें माफ करे, मैं सोचती हूँ जब ये आयतें पढ़ती हूँ, कहती सोचती हूँ या अल्लाह, हम तो बिल्कुल इनसे ऑपोजिट चल रहे हैं, बिल्कुल। यानी वो जो वेस्ट ने दिखाया ना हमें कि माँ बाप की कोई कदरों कीमत नहीं है, मेक फन ऑफ देम, और वो तो ऐसे बेकार सी चीज है एक, और इनका कोई वैल्यू नहीं है, और उनके प्रोग्राम्स में भी माँ बाप को डिग्रेड करके बताया जाता है, और उनके मजाक उड़ाए जाते हैं, और उनको ऐसा घटिया दिखाया जाता है। वो ही हमने बना लिया। रिश्तेदारों को वो भी नहीं पूछते, उनके भी दोस्तियां यारियां, उनको तो पता ही नहीं हमारे रिश्ते हैं कहाँ, क्योंकि कोई किसका बच्चा है वो ही नहीं उसको पता, तो रिश्तेदारियों का आगे क्या पता हो। और रिश्तेदारियां उनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखती। ठीक है, हमने भी वही करना शुरू कर दिया। इसी तरह उनके यहाँ भी औलाद को पैदा करना, हम क्यों औलाद को पैदा करें? औरत को यह कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और ये फैशन ही नहीं है, कम से कम बच्चे होने चाहिए तो वो ही उनको खूबसूरती लगती है। एक तो बहुत देर से हो ताकि हम यंग नजर आए, और सेकेंडली कम से कम बच्चे हो। और मुझे याद है जो छोटे होते हम देखते थे अखबारों में, अपने मुल्क में अखबार में जहाँ कार्टून बने होते थे ना, तो वहां पे कोई मौलाना दिखाए हुए हैं, साथ ड्रॉ की हुई है एक बुरके वाली खातून, और साथ एक बच्चों की पूरी लाइन दिखाते थे। यानी ये एक लतीफे बनाए हुए कि देखो ये इनके मौलवियों के ऐसे बच्चे होते हैं। ये आप देखते हैं कि किस तरह माइंड सेटिंग चेंज की जाती है, किस तरह उसी चीज को डिग्रेडिंग करके दिखाया जाता है, कैसे उसको मजाक बनाया जाता है। एक मोटर बाइक है, उसके ऊपर कोई मौलाना बैठे हैं, पीछे बुरके वाली बैठी है, पीछे इतने सारे बच्चे, को ऊपर है, को नीचे है, को कहाँ है, सारे उसके पास 5-6 बच्चे बिठाए हुए, उसको मजाक जब आप बना लेते हैं तो अरे। फिर जब एक माशरे में इसी तरह चीजों को रिवाज दिया जाता है ना कि ये चीज बुरी है, और क्या दिखाया गया, मॉडर्न सी औरत जा रही है, और साथ बस एक बच्चा, इधर एक लड़का और एक लड़की है, मियाँ बीवी है, और बस दो ही बच्चे अच्छे हैं, बस वो ये ठीक है। और ये सिर्फ लोगों के लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे इन चीजों को तरबीज दी जाती है। हमसे अच्छे तो वो गरीब लोग हैं जो के कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता था ना कि नहीं कम करो बच्चे, कम करो, तुमने क्या बच्चों में बच्चे पैदा करा, तो कहते हैं आप खिलाते हैं बच्चों को। एक औरत को ऐसे कहते हुए सुना, कहती आप खिलाते हैं क्या, हमने खिलाना है कि हम अपने बच्चों को पालने वाले हैं, आप क्या हमें रोक रहे हैं। अब उसकी अकल उतनी, उसको ये नहीं पता कि अल्लाह खिलाता है, लेकिन एटलीस्ट उसको ये तो समझ है कि आप तो नहीं खिला रहे, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो, क्योंकि कयामत के दिन मैं तुम्हारी कसरत पे फख्र करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा हो रहा है। वो औरत ये सोच के बच्चा पैदा करती है कि मेरे मेरे औलाद की वजह से मेरे नबी फख्र करेंगे, उनकी उम्मत में इजाफा हो। तो अगर ये सोच के कोई करे तो ये भी उसकी नेकी, ये उसका जज्बा और ये उसकी नीयत कितनी बड़ी है। और आज हमारे क्या मयार हो गए, और क्या हमने चीजों को समझ लिया कि ये ज्यादा बेहतर है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ज्यादा बच्चे हो, हम कह रहे हैं कम से कम हो तो अच्छा है। हम किधर इनको पालते फिरेंगे, किधर इनका झंझट उठाएंगे, किधर इनकी मुसीबतें उठाएंगे, छोड़ो हमें क्या जरूरत। लेकिन कुरान हमें क्या बताता है, नहीं कत्ल करो औलाद को, खास तौर पे मुफलिसी के खौफ से मत कत्ल करना। खास तौर पे ये कभी ना सोचना कि कैसे पालेंगे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में कि शिर्क के बाद आपसे सबसे पूछा गया ना सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, फरमाया अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाना, हालांकि वो तेरा खालिक है। और उसके बाद पूछा गया इसके बाद, तो फरमाया इस डर से अपनी औलाद को कत्ल करना कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगी। यानी ये भी एक खौफ है कि हमारे साथ किधर उसको रखेंगे, हमारे तो घर इतने बड़े नहीं, हम तो इतना कमाते नहीं है। आजकल कोई लोग पूरा पूरा अपना बजट बनाते हैं, एक बच्चे पे इतना स्पेंड होता है, मेरी तनख्वाह इतनी है, दो बच्चे होंगे तो तभी गुजारा चल सकता है, दो से तीसरा हो गया तो वो किधर से आगे कमाएगा, खाएगा, क्या करेगा, किधर रहेगा। तो उनको बेहतर स्टैंडर्ड लाइफ देने के लिए ना हम बच्चे ही नहीं करते। कत्ल के भी कई तरीके होते हैं, ये भी कत्ल है कि प्रेगनेंसी को ही खत्म कर देना किसी खास लेवल पे जाके करना, वो कत्ल होता है। और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेना तब जायज है कि जब ये इस वजह से हो कि ठीक है माँ की सेहत इतनी नहीं है, माँ इतनी काबिल नहीं है, माँ वीक है, या और कोई रीजंस हो सकते हैं, या फिर एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर परमानेंट तौर पर अपने आप को बांझ कर लेना, इसका भी इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है कि परमानेंटली ऐसे तरीके, अनलेस के माँ की जान को खतरा है। वो कहते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपकी जान को खतरा है, तब तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज टेम्परेरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी अजल किया करते थे लोग, लेकिन उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था, इसको मना नहीं किया था, मगर ये फरमाया था कि ये भी किसी जो रूल जिसने आना है उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इतना टेम्परेरी तौर पर जो भी मेजर ले सकते हैं आप, मगर वो भी रिस्क के डर से नहीं कि खिलाएंगे कहाँ से, और रीजंस हो सकते हैं, मगर अगर ये रीजन है तो ये भी फिर नाजायज है। ठीक है, तो कोई भी कत्ले औलाद की सूरत चाहे जिंदा दरगोर कर देना जैसे उस जमाने में करते थे, या पेट में ही कत्ल कर देना, इन कत्ल हम क्या ना खत हम क्या भी रहा, इनका कत्ल करना बड़ी खता है, बड़े गुनाह है ये। यानी कितने ही लोग आज शरीफ बन के घूमते हैं लेकिन वो कातिल हैं, कातिल उनको कि कत्ल कहा गया, कत्ल, और वो भी अपनी औलाद का, अपनी ही वजूद की एक्सटेंशन का। देखिए आज इंसानियत किस जगह पे पहुंच गई, सोचें ये कौन कर सकता है। ये भी जाहिर है इसके पीछे भी शैतान है जो इंसान से ये करवाने वाला है, इसको भी बहुत समझा देता है, हमारे पर बोझ पड़ जाएगा, हमारी तो इतनी जायदाद नहीं, आपको क्या पता है, इसको तो अल्लाह देने वाला है, उसने बता दिया हम हैं जो तुम्हें भी खिलाते हैं और उसको भी खिलाते हैं। लेकिन क्या इंसान का माइंड हो जाता है कि वो अपनी औलाद को कत्ल करने के लिए मतलब आमादा हो जाता है। और ये जो जो ये पेट के अंदर औलाद को कत्ल करना है, ये भी जो एक लेवल पे जाके, यानी जब बच्चे के अंदर रूह पड़ जाती है, वो इतनी वीक्स का हो जाता है कि उसके अंदर रूह पड़ जाए, तो उसके बाद उसको अबॉर्ट कराना कत्ल है। जब रूह नहीं पड़ी भी तब भी वो एक लिविंग थिंग तो है, उसको खत्म करना कोई कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद तो कत्ल है। और जिस तरह से एबॉर्शन की जाती है, जो उसके तरीके हैं, जरा प्लीज आप लोग मेथड्स ऑफ एबॉर्शन को जरा गूगल करके देखिएगा, कैसे कैसे उसको अल्लाह ताला माफ करे, कि सोच के भी इतनी तकलीफ होती है कि कैसे एक बच्चे की बोटी बोटी कर दी जाती है, फिर उसको निकाला जाता है, उसके सर को कैसे क्रश किया जाता है फिर निकालते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई बहुत प्लेजेंट बात नहीं, कहीं कुछ डिफरेंट तरीके हैं, कहीं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट डाल के उसको उस सैक के अंदर, और उसको किस तरह पॉइजन किया जाता है बच्चे को, उसको बच्चा ब्रीथ कर लेता है और पॉइजन हो जाता है, कहीं क्लैंप से उसको पुल किया जाता है, उसके स्कल को, उसकी खोपड़ी को जैम करते हैं और वैक्यूम से उसका ब्रेन निकालते हैं, फिर वो जो खोपड़ी है वो तो कोलैप्स कर जाती है, बाकी सारी बॉडी निकालते हैं। जो हम घरों में वैक्यूम यूज करते हैं, इससे कहीं ज्यादा पावरफुल वो वैक्यूम होता है, जिससे उसकी बोटियां की जाती हैं। हाँ, इंसान कैसे ये कर लेता है? अल्लाह ताला हमें माफ करे। तो ये भी कातिल है, ये भी जुल्म है, ये कितना बड़ा वैश्याना अमल है। और कत्ल, चाहे आप बाहर आके उसको कत्ल करें या फिर उसको अंदर कत्ल कर रहे हैं, उसके अंदर जब रूह पड़ गई है तो वो कत्ल ही है। अल्लाह ताला उस मासूम का, जो अपना हक खुद नहीं ले सकता, अल्लाह ताला उसका वकील बन के खड़ा। लोग पूछते हैं ना कि वालदेन के तो हकूक बहुत बताए गए, औलाद का कोई हक बताया गया कुरान में? हाँ, तुम्हारे रब ने तुम्हें जीने का हक दिलाया तुम्हारे वालदेन से, वरना वो वालदेन ही कातिल बन जाते। तो किसी वजह से भी कत्ल करना ये जुर्म है, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे क्योंकि पीछे रिस्क की बात आ रही थी, तो इसलिए खशियत इमलाक कहा गया। अब आपको बुरा तो लग रहा होगा कातिल लफ्ज के, कोई कातिल है आज के दौर के अंदर, लेकिन ये तो कुरान कह रहा है, वला तकतलू इन्ना कत्ला हो। तो इसलिए जब अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होता है ना कि वो खिलाता है हमें भी, और वो ही खिलाएगा, या वो ही टेक केयर हमारी भी करता है, वो ही उनकी करेगा, तो फिर इंसान के लिए औलाद को पैदा करने का कोई मसला नहीं रहता। लेकिन जिस वक्त तवक्कुल अल्लाह पे नहीं है, अपने बाजुओं पे, तो फिर इंसान कहता है इस बच्चे को खत्म कर दो, इस जिंदगी को मिटा दो। अल्लाहु अकबर, कितने बड़े खताकार हैं वो पेरेंट्स जो औलाद के पैदा होने से पहले ही उनकी पूरी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि ये पैदा होगा तो उसका रिस्क भी होगा, और उसका ये भी होगा, और उसका ये भी होगा, और उनकी पूरी जिंदगी का उनका रिस्क की गारंटी लेना चाहते हैं। तो ये जो नारा है कम बच्चे खुशहाल घराना, ये नारा ही गलत है, नारा गलत है और सरीहन हदीस की नाफरमानी है। चाहे बेटियां हो या बेटे हो, बाज जगह पे बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है कि बेटी हो गई है, यूं ही पता चला उसके अंदर अल्ट्रासाउंड में कि बेटी है, तो उसी वक्त उसको अबॉर्ट करा दिया गया, यानी उसकी जेंडर भी डिटरमिन हो गई थी, जेंडर का भी पता चल गया था। तो एक जिंदगी है, एक जिंदा इंसान है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो या तीन बेटियों की परवरिश की, उनको पाला, अल्लाह से डरते हुए उनकी तरबियत की, उनकी शादी की, वो और मैं तो जन्नत में ऐसे होंगे, अपनी उंगलियां मिला के बताएं, उनको कोई परवाह ही नहीं, जन्नत किसने देखी ना। जब जाएंगे तो देखे जाएंगे, यहां पे तो कत्ल करो। कितने दुख की बात है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا